सभी लोग विचारों की स्थिरता और दृढ़ता के लिए भावनाओं का अभ्यास कर रहे हैं। संसार की नश्वरता, मृत्यु की अनिवार्यता और मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है, ये मर्म भेदी सच्चाई सुख दुख और राग द्वेष का नाम ही संसार है, जिसमें हम अपने अपने कर्मों का फल अकेले भोगते हैं। शरीर कितना भी हमारे निकट हो, लेकिन फिर भी वो हमसे जुदा है, नाशवान तो है ही, अपवित्र भी है। उसमें न अभिमान करना चाहिए, न उसमें आशक्त होना चाहिए और न ही उससे द्वेष भाव रखना चाहिए, बल्कि उस देह का आत्म कल्याण के लिए सदुपयोग करना चाहिए। ये विचार हमारे जीवन को अच्छा बनाने में तब कारण बनते हैं जब इन विचारों में स्थिरता और दृढ़ता हो। हम सुबह से शाम तक मन, वाणी और शरीर के माध्यम से निरंतर कर्म करते रहते हैं। जैसे कि नदी में प्रवाह जल का निरंतर चलता रहता है, ऐसे ही इन कर्मों के करने के जो मन, वाणी और शरीर आलंबन है, उनके द्वारा भी निरंतर हमारे अंदर भी कर्मों का प्रवाह जारी रहता है। जो जोगन की चपलाई ताते भय आशोभाई, कर्मों के निरंतर प्रवाह का कारण मेरे अपने मन की मलिनता या मेरे अपने उपयोग की मलिनता और मेरे मन, वाणी और शरीर की चंचलता, ये दोनों ही है। जैसे जल स्वच्छ हो तो अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन जल में तरंगे उठ रही हो और जल गंदला भी हो तो दोनों स्थितियों में फिर हमारा चेहरा हमें स्वयं ही नहीं दिखाई देता। ऐसे ही अगर मन, वचन, काय की चंचलता हो तरंगों की तरह और उपयोग में मलिनता हो गंदे जल की तरह, तो हमें जैसे अपना मुख दिखाई नहीं देता जल में, ऐसे ही ऐसी योग और उपयोग की दोनों की मलिनता और चंचलता के चलते हमें अपने आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता और हम निरंतर अपने संसार को बढ़ाते चले जाते हैं। दो चीजें स्पष्ट हो गई कि मेरे मन, वचन, काय की चंचलता, मेरे उपयोग की मलिनता, ये निरंतर मेरे संसार बढ़ाने में कारण है, तो ये तो मेरे लिए हानिकारक है, इसलिए दूसरी लाइन लिखना पड़ी कि जो जोगन की चपलाई ताते भय आश्रो भाई। लेकिन आश्रो दुखकार घनेरे, अगर इस तरह की इस प्रक्रिया को मैं निरंतर बनाए रखूंगा तो ये तो संसार बढ़ाने की प्रक्रिया है जो अत्यंत दुखदाई है। तब बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, जो बुद्धिमान जन है वो ऐसा विचार करके अपने अंदर क्या भावना लाते हैं कि मुझे इससे बचना चाहिए। इतना यह जो भाव है वो दृढ़ हो जाए, मुझे आश्रय हानिकारक है, संसार बढ़ाने वाला है और दुखदाई है, ये विचार का एक पहलू है और उसी विचार का पोषण करने वाला दूसरा पहलू है कि मुझे ऐसी दुखदाई और संसार बढ़ाने वाली प्रक्रिया का समर्थन नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अभी तो होता ये है कि मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा शरीर निरंतर कोई ना कोई उद्यम करने में ही अपना भला जानता है और उपयोग तो मिथ्यात्व और मोह के द्वारा निरंतर मलिन हुआ ही है। सो उपयोग की निर्मलता के लिए और मन वाणी शरीर की सक्रियता को कम करने के लिए मुझे उपाय करना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। क्या उपाय करना चाहिए ये जुदी बात, लेकिन मुझे उपाय करना चाहिए ये मेरे भीतर एक भाव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटा सा है वो, सावधान है, सावधान है, उसको धीरे से छूना मत, छूना मत आप उसको, नहीं तो वो चिड़िया उसको नहीं कागज से लेना। बस ठीक ठीक जाओ। तो उपयोग की मलिनता मेरी बढ़े नहीं और मेरे मन वाणी और शरीर की चंचलता कमती हो, ये निरंतर विचार बना रहे। अब देखो क्या कहते आचार्य भगवंत कि परिणति सब जीवन की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। अब उपयोग की दशा तो मेरी तीन प्रकार से निरंतर होती रहती है। मैं विषयों में अनुरक्त होता हूं वो मेरे उपयोग की अशुभ परिणति है। मेरे मन में जब जप तप स्वाध्याय भगवान की पूजा अर्चना का भाव उत्पन्न होता है, जो धर्म के प्रति मेरा अनुराग होता है, वो मेरे उपयोग की शुभ अवस्था है। और जिन क्षणों में मैं समता भाव रखता हूं, राग द्वेष से रहित अवस्था को प्राप्त होता हूं, वो उपयोग की शुद्ध अवस्था है। सो उपयोग की शुद्ध अवस्था तो पांच पापों का त्याग किए बिना, पांच महाव्रतों को धारण किए बिना, और पांच महाव्रतों को धारण करने के साथ साथ तीन गुप्ती में लीन हुए बिना उपयोग की शुद्धता तो आएगी नहीं। अब मेरे हिस्से में दो चीजें आई, एक शुभ है और एक अशुभ है। मेरे उपयोग में भी और मेरे योग में भी दोनों में ही शुभ अशुभ पना निरंतर बना रहता है सुबह से शाम तक। वह जो शुद्ध आत्म स्वरूप है उसका तो सिर्फ मेरे श्रद्धान मात्र है, अभी तदरूप मेरी परिणति तो हुई नहीं है। परिणति तो निरुपरागः शुद्धोपयोगः, परिणति तो मेरी जब राग द्वेष से रहित होगी तब वह शुद्ध अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन मेरी तो सुबह शाम परिणति शुभ अशुभ रूप ही होती है, चाहे मन वचन काय की परिणति हो चाहे मेरे उपयोग की परिणति। उपयोग ज्ञान दर्शन रूप है, मन वचन काय ये तो कर्माधीन है, ये ध्यान रखना। योग और उपयोग में थोड़ा अंतर है। मन वचन काय जो कि कर्माधीन है वे सब योग की अवस्थाएं हैं तीन, और उपयोग तो मेरे चेतना की ज्ञान दर्शन की परिणति है। चैतन्य अनुविधायी परिणामा उपयोगा, चेतना की जो परिणति है वो उपयोग है, उसमें मलिनता और शुद्धता कैसे आती है, शुभ अशुभपना कैसे आता है, ये जरा सा विचार करें। मेरे मन में जब सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान होता है, सात तत्वों का जैसा स्वरूप भगवान अरहंत ने कहा है उस पर मेरा श्रद्धान होता, मेरी आत्मा पर पदार्थों से भिन्न है जब ऐसा आपा पर का भेद विज्ञान होता, मेरे भीतर की अनंतानुवंती कषाय और मिथ्यात्व की परिणति नष्ट होती, तब मेरे भीतर जो निर्मलता आती है वो है उपयोग की शुभ अवस्था। और जब तक ये प्राप्त नहीं हुई, यानी जब तक मुझे दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तब तक मेरे उपयोग की परिणति तो अशुभ ही है। भले ही मैं मन वचन काय की शुभ क्रियाएं चाहे जितनी करूं, मेरे योग में तो शुभपना हो सकता है, लेकिन उपयोग में शुभपना तो मोह के जाने पर होता है। इसलिए फिर क्या लिखा, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। तब इस परिणति मोह की परिणति के कारण मेरे उपयोग में जो अशोपना है, उसके कारण तो निरंतर मुझे कर्मों का प्रवाह होता ही रहता है। मैं बाहर से थोड़ा बहुत अपने मन वाणी और शरीर को संभाल भी लूं तो उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। लाभ होता भी है तो इतना ही होता है कि मेरे कुछ पुण्य संचित हो जाता है, लेकिन पाप यथावत बना रहता। अगर मेरे उपयोग में निर्मलता आ जावे तो मेरे अंदर बैठे हुए अज्ञान का तो अंधकार हटता ही है, और साथ में मुझे प्रकाश भी प्राप्त होता है, जिसकी ज्योति में मुझे अपना आत्म स्वरूप दिखाई पड़ता। ये जरा बारीक सी बात है, थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगी इसको समझने में। अब तो बहुत दिन हो गए अपन को अभ्यास करते करते, तो थोड़ा अभ्यास बढ़ाना चाहिए कि क्या स्थिति मेरे भीतर निर्मित होती है। ये विचार करें हम, हमारे मोह के कारण हम जो भी मन वचन काय की क्रियाएं करते हैं, वे मन वचन काय की क्रियाएं मेरे भीतर के अंधकार को नहीं हटा पाती। मात्र कुछ थोड़ा सा पुण्य का संचय होता है, लेकिन कर्मों की निद्रा मेरी नहीं होती। मेरे उपयोग में अगर शोपना है, अर्थात दृष्टि निर्मल है, अगर मेरा मोह हट गया है, मिथ्यात्व घट गया है, तब जाकर के मेरे योग में पवित्रता आएगी, तब शुभ का आश्रय होगा, साथ में कर्मों की निद्रा होगी। अब जरा ये शुभ अशुभ दोनों प्रकार के आश्रय को और थोड़ा समझ लें तो थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि यह दोनों रूपों में कर्मों का प्रवाह चलता रहता है। मैं जिस कमरे में रहता हूं, उस कमरे में दो खिड़कियां बनी हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में बनी हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों से अच्छी हवा आवे, लेकिन एक तरफ की खिड़की खोलता हूं तो उस तरफ तो जो है पता नहीं किसने कचरा डाल दिया है, मैंने ही तो डाला था, भूल जाता हूं मैं। सो उस कचरे का ढेर है जिस पर हवा टकरा कर आती, सो गंदी होकर के आती है मेरे कमरे में, गंदी हवा भर जाती है। दूसरी खिड़की भी साथ में खुलती है, उससे बगीचा जो मैंने लगा रखा है उसके फूलों से सुंदर खुशबू भी आती है, पर वो मिल करके गद्दमद्द हो जाती है। सो जब हवा का प्रवाह अधिक होता है पाप की तरफ से, तब मेरा पुण्य तो अल्प फल दे करके मुझे और निकल जाता है। अरे यह क्रम तो निरंतर देखने में आता है कि जरा थोड़ी देर को सुख मिलता है, उसके बाद में दुख की अवस्था आ जाती है। किसी को थोड़ा सा दुख होता है और पूरे भौतिक सुखों में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। ये मामला मेरे शुभ अशुभ प्रवाह का ही है और कुछ नहीं है। अब इस शुभ अशुभ के प्रवाह पर मैं अंकुश कैसे लगाऊं, तो जरा पहले समझ तो लूं कि इसमें से अशुभ का प्रवाह और शुभ का प्रवाह कैसे चलता है। वैसे आश्रय भावना भाते समय आश्रय के कारणों पर विचार करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना इस बात का विचार करना कि यह सब मेरे लिए हानिकारक है। मुख्य तो इतनी बात है, जब भी आश्रय भावना का विचार करें तो दुख कार घनेरे, यह तो मेरे लिए बहुत दुखदाई है, और जो चीज दुखदाई है सो को उसे नहीं के पंखों पूछने पड़त के काय भैया जा करें के न करें, अपने आप तय हो जाता मन के भीतर के न करें, क्योंकि दुखदाई है। इसलिए ये नहीं कह रहे कि करो न करो, बस ये कह रहे हैं कि ये भावना तो अंदर से आनी चाहिए कि दुखदाई है, फिर के बात को काम तो आसान हो जाए। अब तो जो लगता ही नहीं है कि संसार में दुख है,
जो दिना लगन लगे उतना पैसे बाहर निकलवे की गैल अपने आप मिल जाएगी। अब तो दूसरे से पूछ जाते हैं कि का भैया कौन रास्ता से जाने, क्यों पूछना पड़ रहा है, क्योंकि भीतर में अभी वैसा भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ। तो हम ये विचार कर लें कि यह जो प्रवाह है मेरे लिए दुखदाई है, इस प्रवाह से मुझे बचना चाहिए। अशुभ का प्रवाह और शुभ का प्रवाह दोनों ही मेरे ही कर्मों से होने वाली स्थिति है, कोई बाहर से नहीं होती। पहली चीज, कोई मुझे शुभ अशुभ कर्म का फल देता हो या कोई मुझे शुभ अशुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता हो, यह तो सिर्फ बाह्य दृष्टि है। अंतरंग में मेरे ही कर्मों का निरंतर उदय मुझे और अधिक शुभ अशुभ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरे वर्तमान के पुरुषार्थहीनता वातावरण और मेरे मोह का उदय, ये सब मिलकर के मुझे शुभ अशुभ दोनों में लगाए रखते हैं, सुबह से शाम तक प्रवाह को बनाए रखते हैं। तब मैं क्या करूं, अपने पुरुषार्थ को संभालूं, अपने अज्ञान को हटाने का उपाय करूं। वातावरण, वातावरण मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मेरा मोह है और मेरे हाथ में मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है, इसलिए इन दोनों को मैं संभालूं, इन पर मेरा अधिकार है। और उसमें भी मेरे पूर्व में संचित कर्म जो मैंने बांधे हैं उन पर भी मेरा ज्यादा अधिकार नहीं है, वे तो अपना उदय आने पर फल देंगे, उनका फल मुझे कैसे भोगना है इस पर मेरा अधिकार। अब देखिएगा, इसका मतलब ये है कि मैंने पूर्व में अज्ञानतावश अगर इस प्रवाह को, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के प्रवाह को जारी रखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसे और जारी रखूं। अगर मुझे ये समझ में आ गया है कि ये प्रवाह मेरे लिए दुखदाई है, तो मैं इसे रोकने के लिए क्या करूं, हाथ पे हाथ रखे बैठा रहूं कि क्या करूं, मेरे तो ये निरंतर ही चल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। जिन कारणों से चल रहा है उन कारणों को अब मैं कम करूंगा, मैं मिथ्यात को घटाऊंगा, अपने भीतर के असंयम भाव को घटाऊंगा, मैं प्रमाद को घटाऊंगा, मैं अपनी कषाय और मन वचन काय की चंचलता को घटाऊंगा, क्योंकि यही तो कारण बनते हैं। मिथ्यात वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा, ये निरंतर मेरे प्रवाह को और बल देने वाली चीजें हैं, इसलिए इनसे मैं बचूं, क्योंकि मैं दुख से बचना चाहता हूं, ये सब मेरे लिए दुखदाई, ऐसा भाव मन के भीतर आना चाहिए। बात थोड़ी सी कठिन है, एक उदाहरण से समझ में आए जाए, आ सकती है। एक भैया जी हते सो बाबा जी के पास पहुंचे, कहने बाबा जी कोनो मंत्र तो दे दो। भाई क्या करोगे, कहती जिससे देवता हमारे बस में हो जाए, केले दे देंगे। पहले जा बताओ तुम्हारे नौकर चाकर हैं तुम्हारे बस में, केले यहां भी कोनू बात नहीं मानत हमारे। अरे तो भाई तुम्हारे परिवार के जन तो मानते होंगे, वे तो होंगे बस में, कहते वे भी नहीं है। तो लड़के का क्या हिसाब है, केले वो तो और ही नहीं मानत हमारी बात, केले चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन तो तुम्हारे बस में है, केले वो को भी भरोसा नहीं है, तो जाओ फिर कोनू मंत्र नहीं है तुम्हारे लाने का, देवता बस में करो। आया समझ में, ये स्थिति हमारे साथ भी है। हम दूसरे के लिए चाहते हैं कि ये सब स्थितियां ठीक हो जावें, क्या करें, संसारी ऐसा है जिसमें निरंतर मुझे शुभ शुभ परिणाम होते रहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मुझे स्वयं जो है अपने योगों की चंचलता और अपने उपयोग की मलिनता को हटाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ, उस पर श्रद्धांत तो हो जाए कम से कम कि हाँ करना है मुझे, एक भावना तो उत्पन्न हो जाए कि मुझे ये काम करना है, कैसे करना है वो अपन फिर चर्चा करेंगे, लेकिन करना है। और उसमें दोनों में से भी मैं पहली दृष्टि में तो देखूंगा तो पुण्य और पाप दोनों ही प्रवाह हैं, लेकिन दोनों प्रवाह में थोड़ा अंतर है, वह अंतर भी मेरी दृष्टि में स्पष्ट रहे। क्योंकि अभी जब तक मेरे हाथ में अपनी शुद्ध परिणति नहीं आई है, वो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे शुभ अशुभ में से एक चुनना है, तो शुभ अशुभ में से जब चुनना हो तो जरा दोनों पे विचार करना पड़ेगा। पाप तो सर्वथा ही है और जो पुण्य है जिसका आश्रय होता है उसे भी आचार्य भगवंतों ने ही कहा है, लेकिन कथनचित ही है, तो कथनचित उपादेय भी है। किसी अपेक्षा से हे है, किसी अपेक्षा से उपादेय है। पाप तो सर्वथा हे है, लेकिन यह पुण्य भी हे है, इसके पीछे विचार क्या है ये तो देख लूं मैं। अभी तो मैं जल्दी से कह देता हूं कि पुण्य तो हे है, अरे भाई तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया कि वास्तव में है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं। अब मैं विचार कर लूं थोड़ा सा। पुण्य का आश्रय हे है, तो पुण्य का आश्रय तो कषायों की मंदता में होता है, तो क्या कषायों की मंदता हे है तो फिर मैं क्या तीव्र कषाय करूं? अरे ये तो मामला गड़बड़ हो गया। इसका मतलब है कि पुण्य का आश्रय हे नहीं है। सावधानी से विचार करना, मैं बाद में चर्चा करने का मौका नहीं दूंगा, मैं यहीं कर लेना। हाँ जी, चर्चा का विषय नहीं है जी, तो आत्मा में जो अवस्था है उसको देखने का विषय है। ज्ञाता दृष्टा बन करके देखोगे तो ठीक दिखाई पड़ेगा, चर्चा में उलझोगे तो आज तक नहीं सुलझी जा, जिंदगी निकल गई। विचार करना कि कर्मों का जो पुण्य कर्म है, कर्मों में से वो मंद कषाय से होता है पुण्य का आश्रय या तीव्र कषाय से। मंद कषाय से होता है अगर, तो फिर क्या मंद कषाय करना हे है, तो तीव्र कषाय करना उपादेय है क्या? नहीं। मंद कषाय के मायने हैं विशुद्धि और तीव्र कषाय के मायने हैं संकलेश। तो संकलेश करना तो हे है, मेरे लिए तो कषाय की मंदता यानी विशुद्धि उपादेय है और उससे तो पुण्य का आश्रय ही होगा। अब करूं क्या? नहीं तो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, तो पुण्य का बंद ही होगा। अरे भाई, पुण्य का बंध भी जो है वो तो तेरहवें गुण स्थान तक चलता रहता है। अनंत अवस्था में भी तेरहवें गुण स्थान में पुण्य का आश्रय होता रहता है, पुण्य का बंध होता रहता है। इसका मतलब है कि पुण्य का बंध भी ये नहीं है, तो फिर क्या चीज ये है? अबे एकदम निपच है, आखिरी में पच है, अबे तो भीतर बिल्कुल नहीं जा रही हुई है। हाँ बिल्कुल घुसे नहीं हुआ, बिल्कुल हमें मालूम है, क्योंकि हमारी नहीं घुसी वर्षों, तो एक मिनट में कैसे घुस जाएगी? तो थोड़े दम साधे बैठो, आखिरी में देखेंगे जो होगा। उन्हें घुसे तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो न कर गई और न कर जाए। मनो जो बात है उसको विचार तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा कि भैया हे ऐसो छुट्टी पट्टी अपन को का करने हे कह दे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। विचार आज करने बैठे आश्रय का, तो आश्रय तत्व के साथ आश्रय भावना का भी विचार कर रहे हैं, अकेले आश्रय तत्व का विचार नहीं है। मैं विचार तो कर लू कि हे जो चीज है और जो उपादेय है वो मेरे स्पष्ट तो हो जावे, तो चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पुण्य का संवर हे है क्या? अरे भाई, पुण्य का संवर तो ऊंचे गुण स्थान में होता है और संवर तो कभी हे हो नहीं सकता है, इसलिए पुण्य का संवर भी हे नहीं। तो क्या निर्जरा पुण्य की हे है क्या? अरे कैसी बात करते हो भाई, पुण्य की निर्जरा कहीं हो हे होती है? पुण्य की निर्जरा हे कैसे हो सकती, तो जे भी नहीं है हे। अरे तो चलो पुण्य के कारी हे होंगे। अरे नहीं भाई, रोज स्वाध्याय करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सब पुण्य के कारी हैं, तो इनको मैं हे नहीं कह सकता। अब क्या करूं, आपने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया। तो क्या पुण्य का फल ही है? कहती पुण्य के फलस्वरूप तो जिनवाणी का स्वाध्याय करने की क्षमता मिली, सच्चे देव गुरु शास्त्र का सत्संग मिला, मुझे मनुष्य की देह मिली, मनुष्य पर्याय मिली, ये मेरे पुण्य का फल में हे कैसे कह दूं? अरे भाई, छह बातें तो हो गई, क्या कहना चाहते? ने पुण्य का आश्रय, ने पुण्य का बंध, ने पुण्य की संवर, ने निर्जरा, ने पुण्य के कारी, ने पुण्य का फल, तो बचा क्या? कहते पुण्य के फल स्वरूप इंद्रिय सुखों की आकांक्षा और उनमें आसक्ति होना है, लेकिन इतनी छोटी सी बात जिंदगी निकल जा तो समझ में नहीं आती। जहां ये कहा जावे कि पुण्य है सो क्या समझना इतना ही समझना कि मेरे पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाली भौतिक सुख सुविधा की सामग्री में आसक्ति और आवे इस बात की आकांक्षा, ये मेरे लिए संसार बढ़ाने वाली है, इतनी सी बात है। और बाकी ने पुण्य के कारी हे हैं, ने पुण्य का संवर निद्रा हे है, न पुण्य का फल हे है। पुण्य के फल स्वरूप तो पुण्य और पाप की चर्चा कर पा रहे हैं, अब पाप को उदय आ जावे तो पुण्य पाप की चर्चा सुन भी तक में मनने लग जाए। इतना तो पुण्य पल्ले में होना चाहिए जिससे पुण्य पाप की चर्चा कर सके। सो देखो अपने पुण्य का उदय चल रहा, जब तो पुण्य पाप की चर्चा पे इतनी आसानी से विचार कर रहे हैं। तो इससे क्या चीज सामने आई? आखिरी में यही सामने आया कि मेरी ये जो विषया शक्ति है, मेरी जो ये पंचेंद्री के विषयों की आकांक्षा है, वो सबसे पहले मेरे लिए त्याग करने योग्य है, वो मेरे लिए हे है। और वही आसक्ति मेरा मोह और वही जो आकांक्षा है वो मेरी चंचलता। वही वापस लौट के आए कि मेरा अपना मोह और मेरे अपने योग की चंचलता यही मेरे संसार बनाने वाली है। बताइए, मुझे उसे ही घटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, उसे भला ने मानना चाहिए। उसे अगर मैं भला मानूंगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन धर्म के कार्यों को भी मुझे हे ने मानना चाहिए। जिनसे कर्मों की निद्रा और पुण्य का आश्रय होवे वे सारी क्रियाएं हे नहीं है। सो भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय ये सब मेरे शुभ के आश्रय में कारण है। अगर सम्यक दर्शन के साथ में मैं ये सारी क्रियाएं करता हूं तो ये पुण्य के आश्रय के साथ साथ मेरे खोटे कर्मों की निद्रा में भी कारण बनती हैं। ये बात जुदी है कि कोई सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा किए बिना, आपा पर के भेद विज्ञान के बिना और मन वचन का एक ही शुभ क्रियाएं भी घनी करे तो भी बाकी अकेला पुण्य का आश्रय होवे है, निद्रा तो कोई ना ही। सो संसार ही बड़ा तो ऐसे पुण्य को तो निरतिशय पुण्य कहते हैं। वह जो सम्यक दृष्टि का पुण्य है वो सातिशय पुण्य है, जो कि कर्मों की निद्रा का कारण है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ऐसे आश्रय को समझ करके और अशुभ के आश्रय से तो सर्वथा बचना चाहिए और शुभ के आश्रय के लिए मुझे संसार में अटकाने वाला है, भटकाने वाला नहीं है। उस अटकन को दूर करने के लिए मुझे अपने समता भाव का अभ्यास करना है, ताकि मैं शुभ अशुभ दोनों परिणामों के बीच और समता रख सकूं। ये जो है भावना निरंतर बनी रहे। उदाहरण बहुत सारे अपने सामने हैं। महाराज तो अपने लिए यही काम आसान करते हैं, अपन भले ही उसको किस्सा कहानी समझे भैया तो समझते रहे। ये तो प्रथमान योग के दृष्टांत हैं, जो हमारे उपयोग की परिणति से होने वाले फल को प्रदर्शित करने वाले कि उपयोग की अशुभ परिणति का फल क्या है, उपयोग की शुभ परिणति का फल क्या है और उपयोग की शुद्ध अवस्था में क्या स्थिति घटित होती के वो देखो। उनने मुनि दीक्षा ली और वो चले गए और वो ध्यान किया और वो केवल ज्ञान ले। बात चर्चा तो एक लाइन की है, लेकिन पहले तो उनके जीवन के अशुभ और शुभ परिणति का जो संघर्ष चलता है उसको ही तो अपन किस्सा कहानी की तरह वो पढ़ते हैं। सो उसको अकेले किस्सा कहानी नहीं, ये दृष्टांत भाषे हैं। करणानी योग और द्रव्यानी योग का अभ्यास करने वाले को प्रथमानी योग अपनी ही उपयोग की परिणति के दृष्टांत भाषे हैं, ऐसा टोडर मल जी साहब ने लिखा। अपन विचार करें कि हम शुभ और अशुभ दोनों के दृष्टांत अपने जीवन में सामने देखते हैं, अपना स्वयं का जीवन भी दृष्टांत है, तब ऐसे में मुझे शुभ की परिणति से बच करके अशुभ की परिणति से बच करके शुभ में स्थित होना चाहिए और शुभ को ही सब कुछ न मानना चाहिए। मुझे अपने शुद्ध अवस्था का स्मरण निरंतर बना रहे कि प्राप्तव तो मेरा ये है, यह तो मात्र मुझे अशुभ से बच करके थोड़ी देर यहाँ ठहरने का जंपिंग बोर्ड है। जंपिंग बोर्ड जैसे कि कोई नदी में जंप करता है तो पहले किनारा छोड़ करके और 10 फुट आगे आन के वो जंपिंग बोर्ड पे खड़ा होता, फिर उछलेगा फिर कूदेगा उसमें। अब इतनी हो हिम्मत तो, अब वो किनारों तो छूटत नहीं है, पाप तो छूटत नहीं है, पहले नंबर वो जंपिंग बोर्ड छोड़वे की तो चिंता हो जाए। भैया पहले न छूटे, पहले पुण्य न छूटेगा, पहले तो पाप बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में शुद्ध अवस्था की प्राप्ति होते ही पुण्य पीछे छूट जाएगा, छोड़ने का पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब आश्रव तत्व का और आश्रव भावना का विचार करें तो मुझे पुण्य को छोड़ने की जिद न होना चाहिए, बल्कि मुझे तो शुभ को अपनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो शुभ कार्य करने वाले बहुत है संसार लगे हुए, परोपकार के कार्य करने वाले, लेकिन अकेले परोपकार के कार्य करने से नहीं होगा। दृष्टि निर्मल होगी तो आपका परोपकार का कार्य आपके लिए अच्छा माना जाएगा, वरना तो अपना स्वार्थ साधने के लिए तो बहुत लोग शुभ कार्य करते हैं, तो उससे संसार ही सत्ता है, उससे परमार्थ नहीं सत्ता। ऐसा विचार करना, एक छोटा सा उदाहरण सबको स्मरण में दिला दे रहा हूं, बहुत कम प्रथमान युग के उदाहरण हम देते हैं, हमें उतनी मैंने अभ्यास भी नहीं हमारा प्रथमान युग का, पढ़ा तो हमने बहुत है लेकिन भूल जाते हैं, नाम गांव ये सब हमें याद नहीं रहता। पर ये घटना बहुत उपयोगी है, याद भी रह गई। अब बाकी ने पूछिए कि उनकी मताई को कहा ना होते और उनके छह भैया होते उनको कहा ना होते, कौन राजा के भी काकर हती जा नहीं मालूम हमें, धन्य कुमार हती जी मालूम सबको मालूम। और धन्य कुमार के पूर्व जीवन में वे अपने अशुभ कर्मों का भारी फल भोगते थे, सो गरीबी की अवस्था थी। सेठ जी जोन के थे, माने जिसने उनके पिताजी का काम किया वो तो होगा सेठ, और जी हो गए उनके थे नौकर। घर में खीर बनी हैं तो सब बच्चे खा रहे हैं, और धन्य कुमार का नाम था अकृत पुण्य, नहीं करे जो उनने पुण्य, पापई में जीवन निकल गया, सो नाम ही रख दिया अकृत पुण्य। सो मुझे भी खीर दो, मुझे भी खीर दो माँ, तो माँ खीर कहां से देवे, भोजनों की तो नहीं है गुंजाइश, खीर कहां से बने। बड़ी मुश्किल में जो है थोड़ा सा चावल और दूध और मीठा सेठ जी के यहां से प्राप्त करके घर में खीर बनाऊं, ऐसा उपक्रम किया। तो सबसे पहले तो मैं आहार दान देकर के ही भोजन करूं, हाँ स्वयं भोजन करके मैं दिन भर पाप का ही आश्रय करूंगा, जो पुण्य के आश्रय में और कर्मों की निद्रा में लगे हुए हैं उनके लिए वह आहार दान देकर के फिर मैं अपना आहार करूं। ये भावना तो अत्यंत निर्मल भावना है। एक ग्रास हाथ पर रखना बाहर से तो देखने में छोटा सा कार्य लगता है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई जो बहुत भावना है, वो जो श्रद्धान है मोक्ष मार्ग के प्रति, और वो जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले के प्रति जो सेवा का भाव है, वो कर्मों की निद्रा और पुण्य दोनों के अर्जन का कारण ही। ध्यान रखना, ये छोटी सी प्रक्रिया दिखती जरूर है कि जो धरो थे वो भी निकल गए, का भाव कछु तो नहीं भाव, लाइन सी लगी थी सो कहने लगे देख जाते चले जाते। अब 100 आदमी है तो का हो रहा, खेल हो रहा का? अरे ने भैया, खेल तो हम कर रहे हैं यहां पर पांच इंद्रियों और मन के विषयों का, इसी में लगे, उसको कभी हम खेल नहीं कहते। हम धर्म ध्यान की प्रक्रियाओं को जो है देख करके क्षण भर के लिए लगता कि ये तो खेल है, जैसे नहीं। जिनेन्द्र वर्णी ने लिखा कि ये जो मेरा सवेरे से गदगद हो करके स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा के लिए और थाली लगाना और आ करके भगवान के गुणगान करते हुए ये थाली में धरते जाना, ये पागलपन ही तो है। लेकिन ये पागलपन मेरा ठीक है, विषय कषाय की दौड़ में सवेरे से दौड़ रहे लोगों के पागलपन की अपेक्षा मेरा ये पागलपन ज्यादा ठीक। जब शुभ अशुभ की चर्चा आवे तो ऐसा ही विचार करना भाई कि अशुभ से तो संसारी बढ़ेगा, शुभ से तो थोड़ी गुंजाइश है कि मैं अपने को संभाल लेऊंगा। तो उस अकृत पुण्य को मां छोड़ के गई कि भैया देखे रहियो, महाराज आवे तो निवेदन कर लियो और हम तो जा रहे हैं सो पानी भर के आते हैं। प्रसिद्ध है घटना, मुझे तो रिवाइज कर रहा हूं, उसमें जो मुझे बात कहनी है वो महत्वपूर्ण है। और बेटा छोटा सा अकृत पुण्य क्या भाव कर रहा, आ जाते भी महाराज आ जाते जो उनकी कह रही है मत आई बार बार और उनको दे भी की है, हमें तो इतने दिन हो गए हम इनको खाने हैं और उन्हीं की चर्चा के भी आ जाए तो उनको दे दे। उनने कछु करो है का, हम तो इतने दिन से भावना भा रहे, हमने मताई को सब कछु काम भी करो, खीर बनवावे में इतनी मदद करी है, हमारी बिल्कुल नहीं कह रही कि जा कह रही कि भी पहले आ जाए तो महाराज को दे फिर तुम्हें दे, और आ जाती तो अच्छो रहे तो भी जल्दी से थोड़ी बहुत खा लेती फिर तो हमें पूरी खाने ही है। ऐसा मन के भीतर विचार चल रहा है, विचार महत्वपूर्ण है। ये कौन सा विचार है, ये विषयानुराग है, ये अशुभ उपयोग की अवस्था है, ये अश्रद्धान है कि जैसे तैसे हो जाते सो हमारा संकट कट, तो 25 दिना तो वैसे ही हो गए, अब हमें जा मालूम नहीं थी, हो तो जाती हमारे हो जाते सो हमारा बंद हो जाता। अब बताओ इसमें कौन सा विचार है, कौन सा भाव है इसमें, अपने भावों को अपन स्वयं समझ सकते, दूसरा नहीं समझ सकता भाई। हम उलाहना नहीं दे रहे, हम तो कह रहे कि ऐसा भाव मन के भीतर जिस क्षण मेरे आता है उस क्षण मेरे कैसा आश्रय होता होगा, विचार तो करो। इतना ही तो संभालना है, सुबह से शाम तक मन वाणी और शरीर की जो सक्रियता है और मेरे अपने उपयोग में उठने वाली जो तरंगे हैं, उतना ही तो आश्रय मेरे प्रवाह का कारण उतना ही तो है, मैं उसे ही नहीं संभाल पाता हूं। मैं सब दीन दुनिया को संभालने का तो बड़ा उपक्रम करता हूं कि इसको संभालूंगा उसको संभालूंगा, मैं अपने ही उस प्रवाह को नहीं संभाल पाता हूं, उसको दिशा नहीं दे पाता हूं। अब महाराज सामने आ गए, पांव पकड़ लिए कि महाराज चली न जाइयो, हाँ अब वो और कुछ नहीं जानता, महाराज क्या कहें, रुके कि जाएं, अब पैर ही पकड़ लिए तो क्या कहां जाएं। मां उतने में आ गई, कलश तो सिर पे है ही, पड़गा लिया भू स्वामिन अत्र अत्र पधारो, मन वचन काय सबकी शुद्धि है, ये क्रिया बाह्य नहीं है, एक अम्मा जी नहीं रही, वे जब तक रही खूब उनने चौका लगाए, आचार्य महाराज के संग में हार दिए और पड़गाते कैसे थी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आओ महाराज आपका, अब जो जो नहीं बहुत सारी बात, गृह प्रवेश करिएगा, भोजनशाला में आइएगा, हाँ जो तो रटे रटाए बात है, वो रटे रटाए नहीं बोलती थी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आओ महाराज, और भीतर लो आ गई, बैठ महाराज, अच्छा बैठ, हाँ बैठ गए। अब ये सब तो हो गया, थाली वाली क्या दिखाऊंगे, हम तो सब दें, हो भाई ठीक है, अब फिर उसके बाद मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, जीव महाराज, अब जीव महाराज, अब ऐसी कह दें तो लौट जाए आज के महाराज हों तो देखें जो सब का है, मगर उनकी भावना तो देखो, और कोई नहीं लौटता था, आचर्षि तो हंस देते थे और 15 दिन में एक आध बार उनके यहां बूढ़ी अम्मा जी के यहां हो ही जाते थे, क्योंकि उनकी भक्ति उनके भाव कि निर्मलता वो देखने लायक थी, वाही क्रिया के साथ साथ वो महत्वपूर्ण। अब वो पैर पकड़े खड़ा हुआ है और माँ ने पड़गा लिया है, अब माँ से पूछो कि काय की विधि अति तुम्हारी, पूछो अब, रुक गए हैं महाराज और खीर देना शुरू कर दी है, तब क्या विचार करता है, पहले क्षण भर पहले ये विचार था कि थोड़ी सी ले ले में जी महाराज और शेष मैं खाऊंगा, और जैसे ही हाथ पर महाराज की खीर रखी मन का विचार बदला, भाव बदले और मुद्रा देख करके दृष्टि की निर्मलता हो गई, आपा पर का भेद विज्ञान हो गया, ये ध्यान रखना, उस वीतराग मुद्रा से रत्नत्रय धारी की मुद्रा से उनकी उस आहार की प्रक्रिया से, और क्या विचार मन में आता है, महाराज सब ले लें, मैं तो तृप्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले ले, सब ले ले, देता चला जा रहा है, और दो मां महाराज के लिए और दो। और महाराज तो रिद्धिधारी थे, अक्षीण महानस नाम की रिद्धि थी कि जिस रसोई में पहुंच जाएं जो चीज ग्रहण कर ले वो चक्रवर्ती का कटक अक्षौणी सेना भी खा ले वे तो समाप्त नहीं होगी, अक्षीण महानस रिद्धि। और वही हुआ, महाराज तो खीर लेकर के चले गए, और वैसे देखा जावे तो आहार के बाद का जो संतोष है वो सब चीजों को बढ़ा दे थे, चीजें बढ़े चाहे न बढ़े। अब अपने पेट ही भर गए तो भी सब धरी रहे कि नहीं धरी रहे, सो कई बढ़ गई, ऐसा ले लो अर्थ, तुझे तो सामने ही देखने में आता है। आसक्ति घट गई तो चीजें ज्यादा लगने लगती, और आसक्ति बहुत हो गई तो इतनी चीजें हो तो इतनी सी लगे। वो दृष्टि निर्मल हो गई तो भाव बदल गए, उपयोग की जो निर्मल अवस्था है वो प्राप्त होने से बदल गए भाव, और पुण्य का आश्रय होने लगा, क्षण भर पहले पाप का आश्रय हो रहा था उसी प्रक्रिया में, साथ में दृष्टि निर्मल होने से उसके पाप कर्म घटे। और बताइए फिर जहां हाथ लगाता वहां पर सोना निकल रहा है, धन कुमार की ये पूर्व जीवन की अवस्था है। इस उदाहरण में दोनों चीजें छुपी हुई हैं, और धन कुमार का चरित्र आगे पढ़ो तो जब उन्होंने अपने कल्याण के लिए महाव्रत धारण कर लिए, वह जो समता भाव धारण कर लिया, उस शुद्ध परिणति को प्राप्त कर लिया, कैसे अशुभ से बच करके शुभ में स्थिर हो करके फिर शुद्ध पर्याय को प्राप्त किए, उदाहरण बस इतना ही। अपन को जब आश्रय भावना करें तो समझना चाहिए, आज हमने बहुत चित्त से अपनी बात कही तो 10 बज गए, अब आप जो है हमारे 15 मिनट फिर कोनो बिना काट लियो, जैसा भी करने हुए मैंने हमें तो हो गई हमारी चर्चा पूरी। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।